नमस्कार श्रोताओ, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम नए नियम की पुस्तक में से मरकुस रचित सुसमाचार का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि इस पुस्तक से आपको लाभ मिल रहा है। इसमें प्रभु यीशु मसीह के जीवन और उसकी सेवकाई के विषय में बताया गया है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक मधुर गीत।
Oh, हमेशा की करे, सुख की छाया दुख की घड़ी, हर पल उसी में जिए।
सुख की छाया न दुख की घड़ी, हर पल उसी में
प्रिय मित्र, आप सबको प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में मेरा नमस्कार। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब प्रभु की दया से कुशल पूर्वक हैं और आज भी परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने मरकुस रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय में से देखा था, जिसमें हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह आराधनालय में एक सूखे हाथ वाले व्यक्ति को ठीक किए और सप्ताह के दिन के बारे में उससे प्रश्न किए गए। मित्रों, आज हम अपने अध्ययन को उसे आगे बढ़ाते हैं और इस अध्ययन में हम अध्याय 4 से अध्ययन को आरंभ करेंगे। मरकुस के इस अध्याय में हम अनेक दृष्टांत को पढ़ते हैं और उनके बाद आंधी को रोकने का आश्चर्यकर्म एक दृष्टांत को छोड़ ये सब दृष्टांत मत्ती के सुसमाचार में भी हैं, और यही एक दृष्टांत इस सुसमाचार वृत्तांत को भिन्न और विशेष बनाता है। मित्रों, सबसे पहले हम बीज बोने वाले का दृष्टांत पढ़ते हैं, उसके पश्चात उसका स्पष्टीकरण और इसके बाद अन्य सब दृष्टांत और फिर एक आश्चर्यकर्म को पाते हैं। मैं आरंभ में ही कुछ बातों को कह चुका हूं कि यह सुसमाचार गतिविधियों से पूर्ण है, तथापि इसमें दृष्टांतों पर बल दिया गया है और चमत्कार एक ही है। इन दृष्टांतों की विशेषता है कि वे सक्रिय दृष्टांत हैं। मार्कुस दृष्टांत भी दे रहा है तो वह क्रियाशीलता पर बल दे रहा है। हम मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय और उसके 1 पद में इस प्रकार से पढ़ते हैं, वह फिर झील के किनारे उपदेश देने लगा और ऐसी बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई कि वह झील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया और सारी भीड़ भूमि पर झील के किनारे खड़ी रही। मित्रों, मत्ती का स्पष्टीकरण यहाँ अधिक है। वह कहता है कि यीशु घर से निकल कर गया और नाव में सवार हो गया। मत्ती द्वारा लिखा गया यह वृत्तांत प्रतीकात्मक है। घर से तात्पर्य है इसराइल का घर और सागर अन्य जातियों का प्रतीक है। उसकी गतिविधि कुछ इस प्रकार है कि वह इसराइल से अर्थात अपने लोगों के मध्य से निकल आता है और संसार में प्रवेश करता है। मित्रों, इन दृष्टांतों की पृष्ठभूमि यही है और उनका अवलोकन वैश्विक परिप्रेक्ष्य में ही करना होगा। मेरे विचार में इन बात को समझना हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। यह सब उसकी सेवा की चरम सीमा के समय का कार्य है और वह अत्यधिक व्यस्त था और उस पर कार्यभार बहुत अधिक था, जिसके कारण वह थक चुका था और नाव में सो गया। तब हम मार्कुस 4 उसके 2 पद में पढ़ते हैं, और वह उन्हें दृष्टांतों में बहुत सी बातें सिखाने लगा और अपने उपदेश में उनसे कहा। मित्रों, यीशु शिक्षा देने के लिए अनेक दृष्टांत सुनाता था। इस समय वह अपनी 3 वर्षीय सेवा के मध्य में था और उसने इससे पहले प्रतीकों का उपयोग भी किया था, जैसे जीवन का जल। जब वह कुएं पर सामरी स्त्री से मिला था, उसने अपने शिष्यों से कहा था कि वह उन्हें मनुष्य का मछुआरा बनाएगा, और उसने कहा खेत तैयार है। उसने नमक, ज्योति और रेत तथा चट्टान पर नींव डालने के उदाहरण भी दिए थे, जो दृष्टांत नहीं थे, परंतु अब वह दृष्टांतों द्वारा शिक्षा दे रहा था। वह बीज बोने वाले का दृष्टांत सुनाता है। तब हम मार्कुस 4 उसके 3 पद से लेकर के 7 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, सुनो, देखो, एक बोने वाला बीज बोने के लिए निकला और बोते समय कुछ तो मार के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया, और कुछ पथरीली भूमि पर गिरा जहां उसको बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना होने के कारण अर्थात ना मिलने के कारण जल्द उग आया, और जब सूर्य निकला तो जल गया और जड़ न पकड़ने के कारण सूख गया, और कुछ तो झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा लिया और वह फल न लाया। मित्रों, 3 जगहों में बीज गिरा था और ये 3 जगह उन उद्धार रहित मनुष्यों का प्रतिनिधित्व करती हैं जो सुसमाचार को स्वीकार नहीं करते हैं। उनके मन ऐसे हैं जहां से शैतान वचन को चुरा ले जाता है अर्थात चुग ले जाता है। दूसरे प्रकार के मनुष्य वे हैं जिनके मन में वचन जड़ नहीं पकड़ पाता, और तीसरे प्रकार के वे हैं जो संसार को अधिक महत्व देते हैं, अतः वचन को स्थान नहीं मिलता है। परंतु वहां अच्छी भूमि भी थी। हम मार्कुस 4 उसके 8 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाया। मित्रों, अब यहाँ केवल 1/4 बीज बचा है जो अच्छी भूमि पर गिरता है। यह उद्धार पाने वाले मनुष्यों का प्रतीक है जिन्होंने वचन को ग्रहण किया। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि फल लाने की अलग अलग श्रेणियां हैं, 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना। आपको ध्यान होगा कि अंतिम भोज के पश्चात गतसमनी की वाटिका में जाते समय यीशु ने अपने शिष्यों से कहा था, सच्ची दाखलता मैं हूं। मित्रों, उसने उनसे यह भी कहा था कि वह उनसे फल लाने की, अधिक फल लाने की अपेक्षा करता था। उसके विश्वासियों में फल लाने की 3 श्रेणियां हैं जो इस दृष्टांत में भी दी गई है। मार्कुस 4 उसके 9 पद में हम पढ़ते हैं, और उसने कहा, जिसके पास सुनने के लिए कान हो वह सुन ले। यह यीशु द्वारा खतरे का संकेत है, जैसे चौराहे पर ठहरो, देखो, जाओ की बत्तियां होती है। अतः यह स्पष्ट है कि कुछ लोग इस दृष्टांत को नहीं समझे थे, जैसा हम अगले पदों में देखेंगे। मार्कुस 4 उसके 10 से 12 पद में हम पढ़ते हैं, जब वह अकेला रह गया तो उसके साथियों ने उन 12 समेत उससे इन दृष्टांतों के विषय में पूछा। उसने उनसे कहा, तुमको तो परमेश्वर के राज्य के भेद की समझ दी गई है, परंतु बाहर वालों के लिए सब बातें दृष्टांतों में होती है, इसलिए कि वे देखते हुए देखें और उन्हें सुझाई न पड़े, और सुनते हुए सुने भी और न समझें, ऐसा न हो कि वे फिरे और क्षमा किए जाएं। मित्रों, इससे स्पष्ट होता है कि कुछ लोग इस दृष्टांत को नहीं समझे थे। उन्होंने जब यीशु से इसका अर्थ पूछा तो यीशु ने अस्पष्ट उत्तर दिया। मैं आपको समझाता हूं, दृष्टांत सुनाने में यीशु का अपना ही कारण था, क्योंकि उसके वैरियों ने उसकी शिक्षा का तिरस्कार किया था और जन समूह आत्मिक सत्यों के प्रति उदासीन हो गया था। वे दृष्टांतों को अपने स्वार्थ से संबंधित कर देते थे, और यीशु के वैरियों का विरोधी स्वभाव और जन समूह की कठोरता, एक उदासीनता और अंतर ग्रहण करने की कमी ने यीशु को बाध्य किया कि वह दृष्टांतों में परिवर्तन लाए, जिससे कि धार्मिकता के भूखे और प्यासे तृप्त किए जाएं और आत्मिक सत्य के अभिलाषी की आंखें खुल जाएं। मित्रों, पौलुस कुरिन्थ की पत्री में और कुरिन्थ की कलीसिया को अपने प्रथम पत्र में यह विचार व्यक्त करते हैं। कहते हैं, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। परंतु परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा उनको हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुण बातें भी जांचता है। आगे पद 13 में वो कहता है, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखलाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातें आत्मिक बातों से मिला मिला कर सुनाते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। इसे हम पहला कुरिन्थियों के पत्र 2 अध्याय उसके 9 से लेकर के 14 पद में पाते हैं। मित्रों, एक महान सिद्धांत है जिसे पौलुस ने लिखा और आज भी यह प्रासंगिक है। हम मनुष्यों को आत्मिक सच्चाई समझाने के लिए हर प्रकार की विधि अपना सकते हैं, परंतु उनके लिए इन बातों को साकार होने से पहले उनमें समझने की इच्छा होना अनिवार्य है। मैं यह कहता हूं कि यदि किसी मनुष्य का मन और आंखें खुली हो और वह जानने का उत्सुक हो, तब परमेश्वर का आत्मा उस महान सत्य को उसके मन में प्रकट करेगा, अन्यथा नहीं। वह परमेश्वर की बातों को उस मनुष्य के लिए यथार्थ और जीवंत बनाएगा। मित्रों, हम प्रायः कहते हैं कि यदि आप प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण नहीं करते हो या नहीं करते हैं तो आप नाश हो जाएंगे। यह सत्य नहीं है। मेरे मित्रों, सत्य तो यह है कि आप पहले ही नाश हो रहे हैं। अतः सच्चाई यह है कि यदि आप मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण नहीं करते हैं तो आपका संपूर्ण नाश हो जाएगा। यदि आप नाश हो रहे हैं तो आपका नाश निश्चित ही है। अतः यह आपकी प्रतिक्रिया और परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना है जो निश्चित करेगा कि आप बचाए जाएंगे या नहीं। क्या आप मसीह में विश्वास करेंगे? क्या आप उसे अपना मुक्तिदाता ग्रहण करेंगे? ये आपका अपना निर्णय है। अब कोई कहेगा कि यह दार्शनिक विचार है, सत्य नहीं। यह तो किसी से डर वाला काम करवाना है या अंधविश्वास में लाना है। मेरे विचार में ऐसा कदापि नहीं है। मेरे मित्रों, मैं आपको सोधारण समझाता हूं। मान लें कि हमें रेलगाड़ी में कहीं जाना है और वह रेलगाड़ी कैंसिल हो जाती है। जब हम स्टेशन पर पहुंचते हैं तो वहां घोषणा की जा रही है कि पीछे से आने वाली वह गाड़ी कैंसिल हो गई है, अर्थात उसको रद्द कर दिया गया है। अतः यात्री प्लेटफार्म पर खड़ी अतिरिक्त गाड़ी में अपना स्थान ले। आप घोषणा करने वाले को देख नहीं रहे हैं, परंतु जब आप प्लेटफार्म पर पहुंचते हैं तो वहां पर गाड़ी खड़ी है और आपका स्थान भी उसमें आरक्षित है। अब आप क्या कहेंगे कि वह रेलगाड़ी वास्तविकता नहीं है? इसी प्रकार परमेश्वर ने अपना वचन हमें दिया है, वह आपसे मसीह में विश्वास करने के लिए कहता है। परमेश्वर का वचन बीज है। आप कैसी भूमि है? क्या आप पथरीली भूमि है या झाड़ियों वाली भूमि है या अच्छी भूमि है? और यही महत्वपूर्ण बात भी है। हम सब नाश हो रहे हैं और परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना ही निश्चित करेगा कि हमारा संपूर्ण नाश होगा या हम बचा लिए जाएंगे। मित्रों, पद 20 तक का वह दृष्टांत की व्याख्या करता है। तब हम मरकुस 4 उसके 13 से 20 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। फिर उसने उनसे कहा, क्या तुम यह दृष्टांत नहीं समझते? तो फिर और सब दृष्टांतों को क्यों कर समझोगे? बोने वाला वचन बोता है। जो मार्ग के किनारे हैं, जहां वचन बोया जाता है, ये वे हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। और वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं वे ये ही हैं कि जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। और जो झाड़ियों में बोए गए, ये वे हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा और वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है। और जो अच्छी भूमि में बोए गए, ये वे हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। मित्रों, अब यहाँ बीज बोने वाला मनुष्य का पुत्र यीशु है और बीज परमेश्वर का वचन तथा आकाश के पक्षी शैतान है। पथरीली भूमि वे श्रोतागण हैं जो कष्टों और परेशानियों के कारण परमेश्वर के वचन का परित्याग कर देते हैं। कटीली झाड़ियों वाली भूमि वे लोग हैं जो सांसारिक चिंताओं से अभिभूत होकर वचन को अनदेखा कर देते हैं। आज अनेक मनुष्य संसार को अनुमति देते हैं कि वह उन्हें परमेश्वर के वचन से दूर कर दे। मित्रों, अच्छी भूमि वे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को अपना लेते हैं और अपना जीवन परिवर्तन कर लेते हैं। ये वे लोग हैं जो फल लाते हैं, परंतु इनमें से एक तिहाई परिपूर्णता से 100 गुना फल लाते हैं। अतः हम देखते हैं कि यहाँ एक दृष्टांत है जो प्रयोगात्मक है। मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 21 और 22 पद में इस प्रकार से हम पढ़ते हैं। और उसने उनसे कहा, क्या दिए को इसलिए लाते हैं कि पैमाने या खाट के नीचे रखा जाए? क्या इसलिए नहीं कि दीवट पर रखा जाए? क्योंकि कोई वस्तु छिपी नहीं, परंतु इसलिए कि प्रकट हो जाए। मित्रों, यहां हम मोमबत्ती और उसके उत्तरदायित्व को देखते हैं। ज्योति उत्तरदायित्व की जननी है। वह जिसने सत्य के प्रकाश को ग्रहण कर लिया है, उसे कुछ करना आवश्यक है। हमें प्राप्त प्रकाश के अनुपात में काम करना है। ज्योति चमकती है और उसके प्रति आपकी प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण है। कहने का तात्पर्य यह है कि आप और मैं सुसमाचार के प्रकाश के आने तक अंधकार में थे। हमारी समझ में मनुष्य अपनी निर्बलता था, अज्ञानता के कारण पाप में था, परंतु पौलुस रोमियो की पत्री अर्थात रोमियो की कलीसिया को लिखे अपने पत्र में स्पष्ट कहता है कि मनुष्य ने परमेश्वर को जान लेने के बाद भी उसका महिमान्वयन नहीं किया। इस कारण मनुष्य स्वेच्छा से पापी है। हम सब ऐसे ही पापी हैं और जो प्रकाश हमें प्राप्त होता है वह उत्तरदायित्व उत्पन्न करता है। मित्रों, हम नाश हो रहे हैं और यदि हम ज्योति या प्रकाश को ग्रहण नहीं करते हैं तो यीशु को ग्रहण नहीं करने से हमारा भी सर्वनाश निश्चित है। हम मरकुस 4 उसके 23 पद में पढ़ते हैं, और न कुछ गुप्त है पर इसलिए कि प्रकट हो जाए, यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। मित्रों, परमेश्वर चाहता है कि हम यह काम करें। विश्वास कर्म है, विश्वास करने का अर्थ है परमेश्वर ने कहा है उसे हम करें। आज यह कैसा महत्वपूर्ण बात है, मैं फिर वही उदाहरण देता हूँ। आपके सामने रेलगाड़ी खड़ी है और आपको विश्वास के साथ उसमें बैठना है कि वह आपको अपने गंतव्य तक ले जाएगी। आप प्लेटफार्म पर बैठकर संदेह नहीं कर सकते, आपको उसमें विश्वास के साथ बैठना है, और यही विश्वास है। मार्कुस 4 अध्याय उसके 26 से 29 पद में हम आगे पढ़ते हैं। फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे और रात को सोए और दिन को जागे, और वह बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वह न जाने। पृथ्वी आपसे आप फल लाती है, पहले अंकुर तब बाल और तब बालों में तैयार दाना, परंतु जब दाना पक जाता है तब वह तुरंत हंसिया लगाता है क्योंकि कटनी आ पहुंची है। मित्रों, ये एक बड़ा ही असामान्य दृष्टांत है, केवल मरकुस इसे लिखता है। यह भी प्रयोगात्मक दृष्टांत है, यह परमेश्वर के राज्य के बारे में है। आपको ध्यान होगा कि मैंने पहले भी आपसे कहा है कि परमेश्वर का राज्य और स्वर्ग का राज्य दो अलग अलग शब्दावलियां हैं। यहां दोनों का आशय एक ही है। परमेश्वर का राज्य विस्तृत सीमा में है जो संपूर्ण जगत पर उसके राज्य को दर्शाता है, जबकि स्वर्ग का राज्य केवल पृथ्वी पर उसके राज्य को दर्शाती है। और परमेश्वर के राज्य में आता है जैसे हम कहें महाराष्ट्र, यदि मैं महाराष्ट्र में रहता हूं तो भी मैं भारत राष्ट्र में ही हूं। मित्रों, यह एक और दृष्टांत है जिसमें शक्ति का काम का होना दोनों दर्शाए जा रहे हैं। बीज का उगना और बढ़ना आज भी एक रहस्य है। विज्ञान ने वर्षों की उन्नति की है, परंतु यह आज भी रहस्य ही बना हुआ है। आप किसान को बीज डालते हुए देखते हैं और प्रसन्न होते हैं, आप एक अच्छी फसल की आशा करते हैं। कुछ दिनों बाद वहां चारों ओर हरियाली आ जाती है, यह प्रकृति की शक्ति का प्रदर्शन है। यदि यह संपूर्ण प्रक्रिया एक ही बार में हो जाए तो बम फटने के समान होगा, इसमें असीम ऊर्जा होती है। मित्रों, यह दृष्टांत परमेश्वर के सामर्थ का उदाहरण है जो हमारे मन और जीवन में काम करता है, जो बहुत उत्तम है। तो यह कैसा उत्तम दृष्टांत है, आइए मार्कुस 4 उसके 30 से 34 पद में आगे पढ़ें। फिर उसने कहा, हम परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दें और किस दृष्टांत से उसका वर्णन करें। वह राई के दाने के समान है कि जब भूमि में बोया जाता है तो भूमि के सब बीजों से छोटा होता है, परंतु जब बोया गया तो उगकर सब साग पात से बड़ा हो जाता है और उसकी ऐसी बड़ी डालियां निकलती है कि आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। और वह उन्हें इस प्रकार से बहुत से दृष्टांत दे देकर उनकी समझ के अनुसार वचन सुनाता था, और बिना दृष्टांत कहे उनसे कुछ भी नहीं कहता था, परंतु एकांत में वह अपने निज चेलों को सब बातों का अर्थ बताता था। मित्रों, राई भोजन में नहीं आती है, वह एक मसाला है। राई के बीज का पेड़ में विकसित होना एक अप्राकृतिक विकास है, यह मसीही राज्य के बाहरी विकास को दर्शाता है। बड़ी बड़ी कलीसियाएं, बड़े बड़े मसीही कार्यक्रम सब मानव क्षमता द्वारा विकसित किए गए हैं, जिसमें पवित्र आत्मा की भूमिका नहीं है। इनकी शाखाओं में वास करने वाले आकाश के पक्षी अर्थात शैतान हैं। हम देखते हैं कि प्रभु शिक्षा देने के बाद गलील सागर के निकट चला जाता था क्योंकि वह विश्राम करना चाहता था। यहां वह नाव में सो गया और तेज से आंधी उठी। हम मरकुस 4 उसके 35 से 41 पद में पढ़ते हैं। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने उनसे कहा, आओ हम पार चलें, और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वह अब पानी से भरी जाती थी, और वह अब पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उसने उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं। और वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। मित्रों, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि उनके भय का कारण क्या था? प्रभु ने आंधी को शांत किया, इसका उन पर प्रभाव तो पड़ा, परंतु उन्हें भयभीत करने वाली जो बात थी वह यह थी कि तुरंत तत्काल ही सागर शांत हो गया, जैसे आंधी उठी ही ना हो। ऐसा चमत्कार देख वे भयभीत हो गए थे। हम यहाँ एक अद्भुत सबक सीखते हैं कि वह हमें जीवन की आंधियों में लाता है, जिससे कि हम उसकी घनिष्ठता में आ जाएं और उसे अधिक जानें। मित्रों, यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं विश्वास करता हूँ कि इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही अपने जीवन में आशीष को प्राप्त किया है। मित्रों, यह सच है कि हमारे जीवन में भी कई आंधियां और कई तकलीफें आती हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उन आंधी और तकलीफों को शांत करने में सक्षम है। जिस प्रकार उसने इस समुद्र के आंधी तूफान को शांत किया, उसी प्रकार वो आपके जीवन के तकलीफों को भी शांत कर सकते हैं, क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि आप अपने जीवन में शांति प्राप्त करें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। जीत प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। विनती करते हैं पिता परमेश्वर, निरंतर अपने वचन को आप हमें सिखाएं, बताएं, ताकि हम अपने जीवन में आपकी शांति को पा सकें, आपसे प्रेम कर सकें और 100 गुना 70 गुना 60 गुना हम अपने जीवन में फल ला सकें। इस वक्त फिर से एक बार हम सबके साथ हो, हमारी सहायता और मदद करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
जलते चिराग गुल न हो, बुझते दिए जलाओ तुम, प्रेम की ज्योत कम न हो, गाओ गीत गाओ तुम, जलते चिराग को छोड़ो इस ऊंच नीच।